તારીખ 17/7/1998 થી તારીખ 24/7/1998 સુધી પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 139.
થોડી ઉપેક્ષાવૃત્તિ કા અભિપ્રાય હોના શરીર કે પ્રતિ ઉપેક્ષાવૃત્તિ કા અભિપ્રાય બના લે ફિર થોડા વૃત્તિ હો જાય અલગ બાત હૈ.
કિસ તરફ હૈ શરીર?
ઉપેક્ષા વૃત્તિ. શરીર કા જૈસા હો વૈસા હો, હમ તો હમારા કામ કરેંગે હર હાલત મેં, એસે તભી યથાર્થ પ્રકાર સે ગૌણતા હો ગઈ.
सुबह करीबन 3:30 बजे 4:30 बजे नींद खुलता है, कभी कभी 3:30 बजे 4:30, फिर ऐसा रहता है कि चलो अभी तो टाइम है तो आलस लगता है, फिर करीबन 5:45 बजे उठते हैं. फिर उठने के बाद में काम जो बाथरूम वगैरह जाने के बाद में 6 बजे आपके यहाँ पहुँचते हैं, और फिर प्रवचन वगैरह अटेंड करने के बाद में प्रवचन के दरमियान भी कुछ विचार चलता है, परिभ्रमण के चिंतना का विषय का विचार चलता है. फिर यहाँ से जाने के बाद में नॉर्मली सुनीता जी कहती हैं कि भाई नाश्ता कर लो, अरे नाश्ता कर लो, तो नाश्ता कर लेते हैं. उसमें रस वगैरह का फैक्टर देखने का कोशिश करते हैं. एक चीज़ बहुत लगता है कि जैसे डायबिटिक है, मीठा नहीं खाना है, ये अलर्टनेस बहुत समझ में आता है, फिर भी खा लेते हैं. अलर्टनेस होते पर भी ऐसा नहीं करते हैं कि नहीं खाते हैं, खा लेते हैं. फिर थोड़ा सूती वगैरह ये तंग करती है तो थोड़ा 10-15 मिनट उसके साथ रहते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं, नहा धो के फिर मंदिर के लिए निकल जाते हैं. 10 बजे के आसपास मंदिर चले जाते हैं. मंदिर से 11 बजे आते हैं, आने के बाद 11:30-11 बजे बज जाता है मंदिर से आते हैं तो. आने के बाद नॉर्मली ये चेक कर रहे हैं जो हिंदी अनुवाद 493 वाला वो करते हैं. फिर खाना खाने के लिए बोलती है जिस समय में, तो खाना खाते हैं. खाना खाने के समय में भी ये प्रयास करते हैं कि रस आए या कोई इष्टनिष्ठ पना नहीं करना है, जो भी आता है खा लेना है. खास करके ये रखते हैं कि कुछ मांग के नहीं लेना है, कुछ मांग के नहीं लेना है, जो भी मिल जाए उसको ले लेना है. कभी कभी जैसे वो बंदना पूछती है कि भुजिया दे दें, तो भुजिया दे दें, तो मेरे को ऐसे भुजिया पसंद है, तो वो पूछती है कि भुजिया दे दें, तो हम बोला ठीक है दे दो. इस तरह से लेते हैं रस. दिखता है कि ये सब चीज़ में रस है, पर कोशिश करते हैं कि रस का भाई चीज बोलते हैं कि इसमें रस परमाणु है सब. इस तरह से विचार करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें रस का कोई फैक्टर नहीं है. ऐसे एक दो बार सब्जी लाने का भी बनता है, तो ऐसे सब्जी लाते हैं जो हमको पसंद नहीं है नॉर्मली. इस तरह से फिर खाना खाने के बाद में ये अनुवाद का विषय लेके बैठते हैं. नॉर्मली ये सोते नहीं है, दोपहर को सोने का आदत भी नहीं है हमारा. कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा थकान लगता है तो फिर थोड़ा लेटते हैं. बहुत हफ्ता में एक आध दिन ऐसा होता है. जैसे कमर में कभी कभी दर्द, नॉर्मली दर्द रहता है हमेशा ही, परमानेंटली दर्द रहता है, तो कभी कुछ ज़्यादा ये करते हैं. और फिर इसके बीच में अभी यहाँ आने के बाद में थोड़ा वो डायबिटिक वो बंदना मशीन ला के दी थी, वो अमेरिका से ला के दी थी, तो इस बार साथ लेके आए थे. हर टाइम में ये रहता कि क्या डायबिटिक का क्या पोजीशन है. इस बार एक दिन मेजरमेंट किया तो उसमें काफ़ी नॉर्मल आया, तो हम थोड़ा टैबलेट लेते थे, आधा टैबलेट लेते थे, उसको बंद कर दिया. बंद करने के बाद में 5-7 दिन से टैबलेट नहीं ले रहे थे, तो आज जैसे विचार आया कि चलो देखते हैं कि क्या पोजीशन है, तो आज डायबिटिक का फिर वो ही किया. खाना खाने के 2 घंटा बाद डायबिटिक मेजरमेंट किया तो देखा नॉर्मल है. फिर भी कमर में दर्द रहता है, कभी बढ़ता तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद डायबिटिक के कारण से बड़ा होगा. और फिर अनुवाद देखते हैं. अनुवाद के बाद में 3:15 बजे के आसपास सत्संग के लिए तैयार हो जाते हैं. 3:30 बजे से सत्संग है. सत्संग के बाद नॉर्मली फिर वो अनुवाद का काम करते हैं, अनुवाद ही देखते हैं. फिर आपके यहाँ पर घूमने के हिसाब से जाते हैं. फिर शाम के खाना खाने के बाद में यहाँ आते हैं, फिर रात को यहाँ जाने के बाद में फिर वो अनुवाद को लेके देखते हैं, बैठते हैं थोड़ा, और करीबन 10:30-11 बजे के आसपास सोने का बनता है। तो सोने के टाइम में भी ये प्रयास करते हैं, परिभ्रमण का वाला विषय का प्रयास करते हैं। ये सब दरमियान वैसे जो एक जैसे अनगमापना होना चाहिए, एक ये बात तो रहता है कि जैसे ये बात भाईश्री बोलते हैं कि मैथमेटिकल एक एक मृत्यु का इतना जब चिंतना होता है तो अनंत मृत्यु का कहीं क्यों चिंता नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारा जरूर पड़ा हुआ है इसलिए नहीं होता है। तो प्रयास करते हैं पर उसमें कोई ऐसा सफलता नहीं होता है, जैसे वेदना होना चाहिए इस तरह का कोई पोजिशन नहीं बनता है। फिर एक बात यह है कि खाने पीने के इस विषय में रस वगैरह देखते हैं, फिर जैसे जैसे मिताबेन से भी कई बार बात होता है कि बहुत आकुलाहट होना चाहिए, दिखना चाहिए आकुलाहट, पर ऐसे आकुलाहट वाला पोजीशन नहीं दिखता है, कोशिश करते हैं पर ऐसा दिखता नहीं आकुलाहट वाला। ये बात है, ऐसे विचार करते हैं तो कोई रस नहीं रहता खाने में, ऐसे विचार के दरमियान खाना खाते हैं तो इतना रस नहीं पता लगता है, और फिर भी आकुलाहट वाला पकड़ने का कोशिश करते हैं पर पकड़ नहीं पाते हैं। इस तरह से पूरे डे लॉन्ग जो चलता है जीवन, इस तरह से चलता है, उसमें असल में समझ नहीं पाते हैं कि किस जगह में क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारा चिंतना ये मैथमेटिकली इस बात तो करेक्ट लगता है, ये एक्सेप्टेंस भी आता है कि कहीं ना कहीं हमारा जरूर ये चलता है।
ऐसा है, उपयोग में कोई तीव्र रस वाला परिणाम न हो सकता है, उपयोग में कोई व्यवसायिक प्रवृत्ति नहीं हो ये भी हो सकता है। तो व्यवसायिक प्रवृत्ति नहीं है तो उपयोग में आप अनुवाद देखते हो जब जब टाइम बच जाता है, तो बाकी नॉर्मल रूटीन वर्क चलता है। लेकिन हमारी आत्मा भवरोग से ग्रसित है, इसका टेंशन आना चाहिए ना। जैसे किसी को कैंसर हुआ, भले ही दर्द नहीं हो, जैसे ब्लड कैंसर में कोई दर्द नहीं होता, दूसरा कोई बॉडी का ऑर्गन में कैंसर होता है तो दर्द होता है, लेकिन ब्लड कैंसर में दर्द नहीं होता। और बिनाइन वाले को तो पता ही नहीं चलता कि ब्लड कैंसर है कि नहीं है, लेकिन जिसको पता चल गया कि कैंसर है तो उसको टेंशन आए बिना नहीं रहता। जैसे भवरोग तो इससे बड़ा है, तो वो बात की जो सिंसियरिटी आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। दूसरा, भले ही रूटीन वर्क हो, आकुलता तो सब परिणाम में है ही, कल थोड़ा उसे चलेगा विस्तार से। परिणाम में आकुलता तो होती है उदय भाव में, लेकिन हम आदत में आ गए तो मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे कोई गंदगी में रहते हैं तो उनको गंदगी का कुछ नहीं लगता, गटर के पास रहते हैं उसको बांस नहीं आती, उसको दुर्गंध नहीं आती, क्यों? क्यों वो आदत बन जाती है। ऐसे हमारा जो नॉर्मल रूटीन है उसमें हमारी आदत ऐसी बन गई कि हमको आकुलता नहीं लगे, तो वो तो सब इस सर्व सामान्य जीवों को ऐसा ही होता है, कोई हमारी विशिष्टता तो हुई नहीं। तो ज्ञानी कहते हैं कि विकल्प मात्र में दुख लगना चाहिए, मुझे लगने की बात है वो कि कृत्रिमता से हो नहीं पाते, ये तो लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे। तो भवरोग का जो हमारी चिंता है तो क्या है, दूसरी एक बात कि जो परिणति बन गई है संसार की परिणति, जो रस लिया है व्यवसाय में, परिवार में, प्रकृति में, उसकी तो परिणति बन गई है, तो उसका तो मालूम ही नहीं पड़ता। सबको मालूम नहीं पड़ता, ज्ञानियों को तो मालूम पड़ता है, दूसरे दूसरे जीव को भी जो जितने निर्मलता में आते हैं उसको मालूम पड़ता है, लेकिन जिसको ज्ञान का आवरण हो गया उसको मालूम नहीं पड़ेगा। तो लगेगा कि अभी ये नॉर्मल लाइफ में तो कुछ होता नहीं, अब क्या करें, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए तो एक भवरोग का विषय में थोड़ा चिंतित होना जरूरी है, और जो चालू उदय भाव में आकुलता है वो तो उपयोग उतना सूक्ष्म और निर्मल होगा, तभी ही मालूम पड़ेगा, लगेगा, उसके पहले तो इस भूमिका में नहीं लगेगा उतना, वो थोड़ी आगे की बात है। જ્ઞાન ને સાથે ચાલતા વિકલ્પ ને મીંઢવે ત્યારે ખબર પડે કે આ વિકલ્પ માં આકુળતા છે, ન દેખાય, એટલે પહેલા તો ભવ રોગ ની ચિંતા થવી જોઈએ। બહુ મોટો કેન્સર છે આ, કેવું કેન્સર નું પણ કેન્સર છે, એ એકવાર લાગવું જોઈએ, ભાસવું જોઈએ, પછી જે ફેર પડશે એ ફેર પડશે। આવરણ તો આવી ગયું છે એટલે ખબર પડતી નથી, આવરણ એટલે શું કે જ્ઞાન માં આકુલતા છે છતાં ન દેખાય, તો એ પડદો આવી ગયો ને, આવરણ એટલે પડદો, આડો પડદો આવી ગયો,
સેનો પડદો,
એનો પડદો એટલે શું, જેમ જ્ઞાન બિડાઈ જાય છે, એટલું જ્ઞાન બિડાયેલું છે, જ્ઞાનાવરણી નો પડદો છે, ભાવ જ્ઞાનાવરણી લેવું, દ્રવ જ્ઞાનાવરણી નો તો ઉદય છે પણ ભાવમાં જ્ઞાનાવરણી છે,
એટલે લુબ્ધપણું છે એમ કહેવાય, વિષયનું લુબ્ધપણું,
વિષયનું લુબ્ધપણું તો હોય કે છે, એટલું નથી લાગતું કે જમવા બેસીએ તો કઈ રસ નથી આવતો, બીજું તો કઈ છે નહીં ઉદયમાં, એવું તો કઈ ન લાગે કે ભાઈ આપણે એને આમ આરોપ ન કરી શકીએ કે તમે વિષયનું લુબ્ધપણું છે એટલે ખબર નથી પડતી,
એ તો ઉદાસીનતા નથી લાગતી, પછી સામે ઉદાસીનતા નથી લાગતી,
હા એટલી ઉદાસીનતા નથી માનો કે, એટલે નોર્મલ પરિસ્થિતિ છે, બહુ એબનોર્મલ પરિસ્થિતિ એકે બાજુની નથી, ચિંતા થતી નથી થતી, અને કામ કર્યું નથી એનું શું, બધું કામ બાકી છે, ઘણું કામ બાકી છે, બધું એટલે ઘણું કામ બાકી છે એનું શું,
ઠરવું જ નથી એવું હોય તો, નિંદરની નામ ઠરવું હોય તો એ તો ખ્યાલ આવે જ કે બાકી છે, પણ ઠરવું જ ન હોય એવો અભિપ્રાય હોય ત્યારે જ આ પોઝિશન હોય, ખ્યાલ હોય કે આટલું ઠરવાનું છે તો એને ખ્યાલ હોય ને કે આટલું બાકી છે ભાઈ, પણ એને ઠરવાનું જ ન થયું હોય ત્યારે જ એવું હોય કે ભાઈ ખબર ન પડે,
કરવા ધાર્યું નથી,
ધાર્યું જ નથી હજી,
એમ તો વિચારમાં હોય પણ જે વેદના પૂર્વક આવવું જોઈએ એ નથી, અંદરથી જે આવવું જોઈએ વેદનામાંથી એ નથી, બાકી આમ તો સ્વાધ્યાય કરતા હોય એટલે કામ કરવું બાકી છે, કામ થતું નથી એમ વિચાર નો આવતો,
આમાં ચાલવામાં તૈયાર ના થાય પાછું.
આપણું જ્ઞાન કેટલું અવરાયેલું છે, આપણે ઉલટા પરિણામ કરીને જ્ઞાન ને કેટલું આવરણ કરેલું છે કે આકુલતા છે છતાં દેખાતી નથી. આકુલતાના પરિણામ સ્થૂળ પરિણામ છે, છતાંય ન દેખાય તો જ્ઞાન કેટલું સ્થૂળ થઈ ગયું એનો ખેદ થવો જોઈએ. તો આટલું બધું મારું જ્ઞાન સ્થૂળ છે, મને તો ખબર નથી કે આટલું બધું મારું જ્ઞાન સ્થૂળ છે. આમ કોઈ આપણને કે તમને કઈ સમજતા જ નથી ને કઈ ભાન જ નથી ને આવું કઈ અક્કલ જ નથી તો કેવું ખોટું લાગે. પણ આ તો કેવડી મોટી કે પોતાના સ્થૂળ દુઃખને પણ પોતાનું જ્ઞાન પકડી શકતું નથી તો સૂક્ષ્મ સ્વભાવને કેવી પકડશે. સ્વભાવ તો સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ છે, સ્વરૂપ તો એટલું સૂક્ષ્મ છે, એને કેવી રીતે પકડે? સ્થૂળને ન પકડી શકે, સ્થૂળને કેવી રીતે પકડી શકે? એમ વિચારણામાં જ આવવું જોઈએ, ખેદ આવશે એનો. પોતાનું કામ ચાલતું નથી એનો ખેદ તો આવવો જોઈએ, અથવા પોતાને આત્મશાંતિની પ્રાપ્તિ નથી છતાં જીવન ચાલ્યું જાય છે એનો અર્થ શું છે? કે આત્મશાંતિની જરૂર પણ નથી. જરૂર હોય પ્રયત્ન કર્યા વગર રહી શકે? તરસ લાગ્યું હોય પાણી વગર, પાણી ગોતા વગર કે પાણી પીધા વગર કેમ રહી શકે?
એક બાજુ છે વિકલ્પ માં જો દુઃખ લાગે તો જ વધારે આકુલતા થાય ને પછી એમાંથી વેદના આવે.
નહીં, એમાં શું છે, વેદના તો પહેલા આવશે પછી બધે ખ્યાલ આવશે.
વિકલ્પમાં દુઃખ લાગશે તો વેદના આવશે ને?
વિકલ્પમાં દુઃખ તો જરા ઉપયોગ સૂક્ષ્મ હોય, નિર્મળ હોય તો લાગે, નહીંતર તો આવરત ન હોય તો ન લાગે. હવે પહેલાં તો ચિંતનામાં આવવું જોઈએ, તો દર્શનનું મન થાય અને નિર્મળતા આવે. એવું છે કે વિકલ્પમાં પણ તીવ્ર મન તો છે જ, એમાં તે તીવ્ર મન તો છે. તીવ્રતામાં દુઃખ લાગે છે કે મનતામાં દુઃખ લાગે છે પછી એવી રીતે પણ થોડું વિચાર ખ્યાલમાં લેવું જોઈએ. એ થોડી વિચિત્ર પરિસ્થિતિ છે કે આવું સ્થૂળ દુઃખ લાગતું નથી, એટલું ભારે કર્મી પણ છે. હળુકર્મી જીવને લાગે છે ભલે પછી વેદના આવે, કોઈને કોઈને લાગે છે એટલું હળુકર્મી પણ છે, એટલું આવરણ ઓછું છે. એક વિચાર આવે, જો બી બાહ્ય પરિસ્થિતિ અનુકૂળતા યા પ્રતિકૂળતા કે હોને વાલી હૈ તો પ્રારબ્ધ કે અનુસાર હોગી. हमारे पुरुषार्थ के हमारे प्लानिंग के अनुसार तो होगी नहीं। चाहे हम आत्मकल्याण को गौण रखें या मुख्य रखें, आत्मकल्याण को मुख्य रखें तो भी वैसा ही होने वाला है, गौण रखें तो भी वैसा ही होने वाला है, फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि आत्मकल्याण पुरुषार्थाधीन है, ये कोई प्रारब्धाधीन नहीं। तो ऐसा सोच करके जो भी भविष्य में होगा वो तो होने वाला ही होगा, विश्वास रख करके और निश्चय को बलवान बना करके आत्मकल्याण के विषय में प्लानिंग कर लेना चाहिए। वो प्लानिंग बढ़िया है, बजाय हम बिजनेस के प्लानिंग करें। और बिजनेस के प्लानिंग कुछ भी करेंगे या नहीं करेंगे तो प्रारब्ध है वैसा सहज हो जाएगा। नहीं फर्क पड़ जाएगा, पुरुषार्थ के इस आत्मकल्याण के विषय में वो बात जुड़ी हुई है तो फर्क पड़ जाएगा। अगर आत्मकल्याण के विषय में नहीं जुड़ी हुई है तो प्रारब्ध अनुसार होगा। तो भावना अनुसार बनेगा, और भावना नहीं है तो प्रारब्ध अनुसार बनेगा। मानो कि आपकी भावना नहीं है फिर भी आपका प्रारब्ध इधर है तो आप किसी न किसी रागवश इधर रह जाओगे, किसी न किसी प्रकार की राग की प्रधानता हो जाएगी और आपका प्रारब्ध इधर काम करने लगेगा। अपने को तो यही विचार करना है कि हम आत्मकल्याण को क्यों गौण करें, मुख्य रखें तो कोई आपत्ति होने वाली नहीं है। आत्मकल्याण को मुख्य करने से कोई आपत्ति होने वाली नहीं है और इसके कारण से हमारे परिणाम गिर जाएंगे, वो डर, उस प्रकार का जो डर है, भय है, वो बिना समझे हुए हैं, बिना सोचे हुए हैं। अगर समझे तो वो डर रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर डर ही है तो डर तो वहां भी काम करेगा, हम कितना भी पुरुषार्थ करेंगे फिर भी फेल हो जाएंगे तो क्या संसार में चतुर से चतुर लोग फेल नहीं होते क्या? क्या दिखता है वो लोग फेल होते, वो नहीं दिखता है क्या? तो अब फिर भी इसमें कोई फेल नहीं होता है क्या? तो आप फेल होता है उसको गौण करते हो और नहीं होता है उसको मुख्य करते हो, फिर भी वो भी आपके हाथ के बाजी तो है ही नहीं। तो बात रही आत्मकल्याण की, आत्मकल्याण पुरुषार्थाधीन है तो उसका सक्सेस क्यों नहीं दिखता है? जब ये पुरुषार्थाधीन चीज है तो इसका सक्सेस क्यों नहीं दिखता है, ये बोलो। पैसा की आमदनी दिखती है बिजनेस में, देखने से कोई घर में तो नहीं आ जाता, लेकिन हम सोचते हैं कि एक महीने का इतना टर्नओवर, तो 12 महीने का इतना टर्नओवर, तो एनुअल प्रॉफिट, वार्षिक मुनाफा उतना दिखते हैं। होता है तो जो होने वाला है वही होता है। एक पार्टी में आप एक पार्टी ने बहुत माल लिया आपका, वर्षों से ले रहे हैं, वर्षों से आपका व्यवहार अच्छा चलता है, वही पार्टी का नियत खराब हो गया, मतलब वो खुद घाटे में है और आपका बहुत जो माल लेता है उसके 10-20 गुना ले लिया। आप तो जब लिया तो राजी हो गए, जब पैसा नहीं आया तो पता चला कि वो तो सफा हो गया, अपन भी सफा हो गया। बिजनेस में कोई मुनाफा का सवाल नहीं रहता, पैसा कहाँ कैसे चला जाता है प्रारब्ध के अनुकूल, वो किसी के हाथ की बाजी नहीं। तो अब जो बात हो रही अपनी चर्चा में कि आत्मकल्याण को गौण क्यों करना, गौण करने से तो कोई फायदा है नहीं, इससे कोई फायदा हो जाता है तो वो भी करें अपन, इससे तो कोई फायदा है नहीं। यहाँ आपको लाखों करोड़ों दिखेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं दिखने में, अरबों तो दिखेंगे नहीं चांदी के, ये पायल के बिजनेस में कोई अरबपति होने वाला तो है नहीं, करोड़पति हो सकता है ना, ये धंधो से हमें एक करोड़ बे करोड़ पांच करोड़ हद थे कि पांच दस करोड़ का, कोई सौ बसो करोड़ मलवा वाला चीज है नहीं क्या। अब आत्मकल्याण के विषय में पुण्य ऐसा बनता है कि देवलोक में अगर आपको जाता है ऐसा जीव तो उसकी जूती में करोड़ों के तो रत्न होते हैं, क्या इसकी जूती में किसकी कमाई बढ़ गई बताओ, भौतिक दृष्टि से देखे तो। आत्मकल्याण की उपलब्धि है वो सिद्धि है, उसका तो मूल्य किसी टर्म में हो ही नहीं सकता, इसकी तो कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। अब मूल्यांकन करना वो अपने बुद्धिमानी के सवाल है, अपना बुद्धिमानी का सवाल है कि हम कितने बुद्धिमान हैं, बस बात खत्म। सान्य चर्चा ना अनुसंधान में बात लेनी है, हमने भी ऐसा ही किया था, हर हालत में हमको यही करना है, हमने निवृत्ति लिया तो हमने देखा नहीं कि हमारे पास क्या है या नहीं है, लेना भी ले लिया बस बात खत्म, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा,
फिर हम लोग
कोई प्लानिंग नहीं किया, कोई व्यवस्था थी भी नहीं और है भी नहीं, थी भी नहीं और है भी नहीं, फिर भी था दो चार रोटी में से जाता नहीं, प्रारब्ध है तो, पर प्रारब्ध नहीं है तो वो भी नहीं मिलेगा, करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी दो चार रोटी खा नहीं सकता आदमी, डॉक्टर बताएगा कि खाना है तो हमारी गोली खाओ वरना मर जाओ, रोटी खाओगे तो मर जाओगे, क्या करोगे, संपत्ति किस काम की, अब पिस्तौल की गोली खाओ या डॉक्टर की गोली खाओ एक ही बात है, वो तो उसमें कोई दम नहीं है, अपना काम कर लेना चाहिए बस, यही बात है।
हम लोग जैसे अटकते हैं ना, ये डिसीजन लेने के बाद में भी जो हम लोग अटकते हैं, क्या पॉसिबल कारण हो सकता है जिसके कारण से हम लोग आगे, ये जो एक
छोटी मोटी बात में अटकते हैं, मामूली बात में, बहुत मामूली बात में बहुत बड़ी बात गौण हो जाती है, यही बात है।
एज फॉर एग्जाम्पल
छोटे मोटे उदय जो है, रोजाना जो रूटीन वर्क है उसमें, रूटीन वर्क है उसमें सब पूरे उदय को गौण करके आंख मिच तो एक ही काम करना, एक लय से अगर कोई पीछे लग जाता है तो आसान है, अगर ऐसा नहीं करता है तो कठिन है, इतनी सी बात है। जैसे मामूली चीज में वेट चला जाता है, चाहे कपड़ा हो चाहे खाने पीना हो चाहे कोई छोटी मोटी बात हो, कोई दम नहीं है उसमें, इतना बड़ा काम को गौण करके हम क्यों छोटी मोटी बात को उतना अधिकता दे दें, उतना ही सोचना है, उतना ही विचार करना है। वो तो ऐसी बात हो गई कि आप क्लास में पढ़ते हो तो कितने फेल होते हैं उसी पर आपका ध्यान है। फर्स्ट नंबर तो एक ही आदमी आता है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता कि हम उसकी जगह हमारा स्थान होना चाहिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अब 40 में तो 25 तो फेल हो गया, तो हम फेल हो गए तो क्या बड़ी बात हो गई, ऐसी बात हो गई। लेकिन फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए उसको देखो ना, आपको सक्सेस को देखना है, किसी को बिजनेस में दिवालिया को क्यों नहीं देखते हो कि हमारी सिटी में आज तक दिवाला कितने ने, आगरा में दिवाला कितना ने, कितने लोगों ने निकाला। आगरा में बहुत बड़े सटोड़िए लोग हैं, आपको मालूम हो गया नहीं होगा, हमको तो मालूम है, हैं? और दिवाला निकालते हैं वो तो देखते नहीं है। कौन पैसे वाले होंगे उतना ही देखते हैं अपन। इसका मतलब क्या है कि हमारी नजर कहाँ है, जो हमको पाना है वहीं हमारी नजर है। हमको फेलियर पाना है तो हमारी नजर फेलियर पे जाएंगे, गलत नजर है। ये सोचने का तरीका ही गलत है, बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। हाँ, कहाँ से उठेगा? हमारी दृष्टि नीचे है तो हम नीचे जाएंगे, दृष्टि ऊपर रखेंगे तो ऊपर जाएंगे।
वैसे कोशिश करते हुए अगर देह छूट भी जाएगा तो आने जाने में तो सब सही, मतलब सब कुछ के चरण मिलेंगे।
ठीक बात। और उधर जा करके अगर देह छूट जाएगा तो दुर्गति में चले जाएंगे, उसका भी विचार करना चाहिए। मैंने चारों फड़कों से ये लाइन अच्छी है, बढ़िया है। बिजनेस में भी आपको मानो के लाखों करोड़ों मिल गए, टेंशन आएगा, इसका क्या करोगे? अब देखो टेंशन फ्री कौन आदमी है, हम तो यूरोप जाके आए, लोग वहाँ पैसे वाले हैं, किसी को चैन नहीं है वहाँ। तो फिर उस पैसा क्या काम का, किस काम का बताओ? अगर हमें शांति से वर्तमान भाव में भी जीना है तो भी ये लाइन बेटर है, और भविष्य के लिए भी बेटर है, और पारमार्थिक कल्याण के लिए भी बेटर है। चारों पड़कों से ये तो अच्छा है, सर्वांग सुंदर है मार्ग, तो ये मार्ग तो सर्वांग सुंदर है। तो फिर उसके विषय में निर्विकल्प हो करके इस काम में आगे अग्रसर हो जाना चाहिए, निर्विकल्प होकर के। पहले सोच लेना, सब प्रकार का विकल्प कर लेना, फिर निर्विकल्प हो जाना, चारों पड़खों से उनके विकल्प करके फिर निर्विकल्प हो जाना कि भाई यही करने लायक है, दूसरा कुछ करने लायक नहीं, और इसका कोई विचार भी करना कि नहीं करना, वो विचार भी नहीं करना, ऐसा हो जाना चाहिए।
ખ્યાલ આવતો હતો કે આપણે અત્યારના માન નથી ખવાવું જોઈએ, મીન્સ માન નો ચડવું જોઈએ, માન ને ઠેસ ન પહોંચવી જોઈએ, આપણે ચેક કરવાનું છે અત્યારના કે કેટલી માને ઠેસ પહોંચે છે પછી એમાં જ્યારે મામે ઊભી રાખેલી મને ક્લાસની બહાર ત્યારે થોડું તો ચડતી જ માને ઠેસ પહોંચતી જ હતી મીન્સ આમ જે એકદમ પહોંચવી માને ઠેસ જ ન પહોંચે એવું થવું જોઈએ પછી એવું નહોતું થતું
કઈ તો આપણી ભૂલ હતી તો આપણને પનિશમેન્ટ આપી, એમાં માન અપમાનનો ક્યાં વિષય જ આવે છે? ભૂલ તો આપણી હતી ને, તો સારી વાત છે. આપણી ભૂલ થઈ તો એનું આપણને પનિશમેન્ટ મળવી જ જોઈએ, પછી એમાં માન અપમાનનો ક્યાં સવાલ છે?
બીજા બી ત્રણ ચાર પીરિયડ ની નહોતી લઈ ગઈ, એમાં નહોતી મળી, આમાં જ મળેલી, એટલે એવું થયું હતું.
આપણા ક્લાસમાં બધાની વચ્ચે આપણે સારા દેખાવું, આપણો દેખાવ સારો થવો જોઈએ ને, ખરાબ ન થવો જોઈએ, એમ જ છે ને એમાં. હા, એનું નામ, એનું બીજું નામ લોકસંજ્ઞા છે. આપણને જે જાણતા હોય એવા લોકોમાં આપણે સારા દેખાવો, એ લોકસંજ્ઞા કહેવાય. તો ગુસ્સા કી પ્રકૃતિ ભી જોર કર દેતી હૈ, ઉદય આતા હૈ, કોઈ ને કોઈ બહાના મિલ જાતા હૈ ઉદય મેં, તો ગુસ્સા કી પ્રકૃતિ જોર કર દેતી હૈ. ઓર એક અપનત્વ કા ભી કારણ હૈ, મેરે બચ્ચે હૈ, દો કારણ સે યે બનતા હૈ. થોડા નુકસાન કો સોચો और परिभ्रमण की बात को लागू करो कि हमको कहाँ तक ऐसे कर करके परिभ्रमण बढ़ाना है. अभी तक तो बढ़ाते आ रहे हैं, वे कहाँ तक बढ़ाना है, वो बात को थोड़ा वजन से, इम्पोर्टेंस दे करके उठाना है. वो परिभ्रमण जैसी बड़ी बात हल्की हो जाती है और छोटी मोटी बात बड़ी हो जाती है, ये बनता है.
ये समय पता लगता है एक चीज से काम नहीं चलता है और साथ में कुछ चाहिए ऐसा लगता है. थेपला के साथ दही लिया तो साथ में और दही के साथ में मिक्स करने को कुछ चाहिए था.
सब परिभ्रमण का कारण है, ऐसे देखो. और जो भी हो गया और मालूम पड़ गया, जैसे आप बता, मालूम पड़ गया तो बता रहे हैं, तो इसके पीछे खेद कितना है, बहुत खेद अगर आएगा तो कमजोर होगा प्रकृति, तो खेद भी ज़्यादा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बता दिया तो काम बात खत्म होगी, खेद भी अधिक होना चाहिए. जितना खेद ज्यादा होगा उतना ही वो कमजोर प्रकृति का भाव हो जाएगा.
कोशिश करके नहीं पिएंगे, इतना तो नहीं याद आता है, थोड़ा पहले से कम हो गया. वैसे आज ऐसा लगता था पेट भर के दूसरा नाश्ता कर लिया है, शायद इसलिए जरूरत नहीं लगी जाएगी. मालूम नहीं सही है कि
तब परिणाम खींचता नहीं है
इतना. नहीं,
अच्छी बात है. अच्छी बात है। आदत है वो तो एक बंधन है, और हमें मुक्त होना है तो एक सिद्धांत बना लेना चाहिए कि हमें किसी बात का बंधन नहीं चाहिए, हम किसी के बंधन में रहना चाहते नहीं, और हमारी आज़ादी को कोई दबा दे ये बात हमको मंजूर नहीं है। इस तरह से लेंगे तो किसी के चीज बिना नहीं चले वो बात रहेगी नहीं, और रहने
अभी ऐसा निर्णय किया कि अभी चाय नहीं लेंगे, दूध चालू करेंगे। तो कल रात को दूध लिया ना तो एकदम अंदर से जी घबराने लगा, अंदर से जी घबराने लगा, घबराहट होने लगी। तो फिर वो फिर भी अंदर का निर्णय कमज़ोर नहीं हुआ कि नहीं लेना है, अंदर से तो ऐसे ही आया कि अब दूध ही लेना है।
ऐसे चाय की जगह कुछ और ले लेना है वो बात नहीं करना कि चाय नहीं लेंगे तो ये ले लेंगे वो ले लेंगे।
तो बिना दूध चाय के बिना कब प्रयोग करते देखो, और कल तो खाना नहीं खाया
तो एक संतुष्टि हो जाएगी कि चाय नहीं लेते तो दूध लेते या कॉफी लेते हैं या कुछ लेते हैं।
नहीं ऐसे है कि शाम को जैसे खाना नहीं खा पाते ना तो लेते हैं, जैसे शाम को खाना खा लेते हैं ना तो फिर कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ऐसे अंदर से नहीं रहता कि चाय की जगह दूध ले लें, हो जाए तो ठीक है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी नहीं ऐसा रहता है कि तो कुछ नहीं लिया।
अपने को बंधन में नहीं रहना है। सही बात तो किसी भी चीज के बंधन में हमको नहीं रहना चाहिए, जैसा कैसा भी चलना चाहिए, रुखा सुखा कुछ भी नहीं, सिर्फ किराया देने की बात है पेट को।
खेत का परिणाम वास्तविक रूप से उतना होता नहीं है, तो उसके लिए बारंबार उस विषय को वर्णन करना चाहिए दोष जो हुआ
है। उसका फल दिखे तो जरूर होगा, तो वो सहज होना चाहिए, कृत्रिमता से करने से कोई फायदा नहीं है, तो वो असली चीज नहीं है। खेद करना चाहिए इसलिए खेद करे वो बात, लेकिन हमारा परिभ्रमण का वैसा का वैसा कारण खड़ा है और हमारे वर्तमान भाव भी इसी में ही निमित्त पड़ते हैं, तो वो बात सही समझ में आए तो खेद आए बिना रहेगा।
जैसे आकुलता दिखता है पर ये इस तरह से नहीं आ पाता है, जैसे कोई बहुत वेदना हो उस विषय को, इस परिणाम के कारण से बहुत वेदना हो, ऐसा नहीं लगता है।
तो खेत बढ़ेगा तो वेदना आएगी, खेत के परिणाम तीव्र होने से ही वेदना आएगी।
परिणाम में जो गलती हो रहा है, गलती होता है उसको पता लगता है, पकड़ में आता है, पर ये नहीं होता है कि उसके लिए जैसे एक भीतर से ऐसा तिरस्कार हो कि ऐसा कई बार ऐसा भी विचार में तो आता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, जागृति रखना है, फिर भी इसके लिए जैसे वेदना, इस परिणाम के कारण से वेदना हो, वेदना नहीं होता है। आज ऐसे एक विचार ये चल रहा था वैसे कि जैसे आत्मभावना बढ़ाने से वेदना का पोजीशन बन सकता है, जैसे आत्मभावना के कारण से। और ये भी विचार चल रहा था कि आत्मभावना बढ़ाने के लिए जैसे सबों ने संसार के कोई भी विषय में तो इम्पोर्टेंस दिया नहीं है, हम कहीं ना कहीं संसार के कहीं ना कहीं सुख बुद्धि करके अटक रहे हैं, हमारा कहीं ना कहीं सुख बुद्धि किसी न किसी विषय में चलता है, तो उसको कहाँ किस तरह से खोज खोज के, जहाँ कोई भी सुख बुद्धि संसार में कोई भी चीज़ में सुख नहीं है, ये सबका अभिप्राय है। ये बात तो जब हम भी सम्मत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अटकते हैं, वेदना नहीं होता तो आत्मभावना में कि सुख बुद्धि है नहीं, फिर हम सुख बुद्धि क्यों कर रहे हैं, ऐसा विचार चल रहा था। आपको इसमें रस है खाने पीने के विषय में, मेरे को चेक करते हैं तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है, फिर भी हमने तर्क वितर्क करते हैं तो मेरे को ये परिणाम में बहुत आकुलता दिखता था कि हम क्यों करते हैं तर्क वितर्क, मेरे को क्यों क्या जरूरत है, ऐसे भी लगता था कि भाई श्री के सामने कोई कितना भी बोलता है भाई श्री कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो मेरे को क्यों तर्क वितर्क करने का ऐसा अभिप्राय चलता है अंदर से। ऐसे इस तरह से एक विषय में ऐसा लगता है अनुभव बना लगता है, फिर भी ऐसा ऐसा विरक्त संसार में बिल्कुल संसार में विरक्ति बना आ जाए, उदास बना आए, ऐसा परिणाम बनता नहीं है, सब परिणाम देखने में नहीं आता।
उदासीनता सही उदासीनता तो वेदना से आएगी, चिंतना से आएगी।
ऐसे जो चिंतना का बात चलता है, चिंतना का मतलब जो मेरा जो वर्तमान में जो पोजीशन चल रहा है उसी का अवलोकन करके उसका उस पोजीशन के चिंतना।
चिंतना मैंने चिंता चिंता की क्रिया को कहते हैं चिंतना। जैसे हमारा परिभ्रमण मिटा नहीं, अनंत काल से चालू है, कैसे कर क्या करे तो मिटे, क्या करे तो मिटे, क्योंकि एक भवरोग है बहुत बड़ा भयंकर, वो रोग कैसे मिटे कैसे मिटे, इसकी चिंता को कहते हैं चिंतना। ऐसे इस तरह से
ये एक ऐसे इस तरह का एक चिंता तो रहता है पर उसको मुख्य रूप से शायद नहीं रहता है, इस कारण से वेदना नहीं होता है।
हाँ, तो उसका डिग्री बढ़ता है तो वेदना में आता है, इस चिंता की डिग्री बढ़ जाने से वेदना आती है। पहले चिंता शुरू होती है, वो चिंता बढ़कर के वेदना में आता है, वेदना बढ़कर के जुर्णा में आता है, वहां तक पहुंचना है आपको जुर्णा के स्टेज, तभी सही उदासीनता आएगी, फिर लक्ष्य बंध के बनने की बात है। तो इसके पीछे परिणाम बराबर एक लय से लगे तभी तो काम होगा, उसका सततपना बहुत जरूरी है। तो ये सततपना का महत्व है, थोड़ा कभी हुआ फिर नहीं हुआ, फिर थोड़ा हुआ कभी नहीं हुआ, वो काम कभी नहीं होने वाला है। और क्यों नहीं होने वाला, कि थोड़ा हुआ फिर नहीं हुआ इसका मतलब कि हमारा रस और जगह जाता है, तब तो नहीं होता है, ये बात क्यों छूट जाती है कि हमारा रस और जगह जाता है इसलिए छूट जाती है, इसलिए हमारा रस दूसरे जगह जाता है तो उदासीनता आएगी कहाँ से। रस दूसरी जगह जाता है इसका मतलब कि हमने परिभ्रमण की बात को गौण कर दिया, दूसरी बात को मुख्य कर दिया, सीधी बात है, सादी बात है।
નબળાઈ થશે ને પ્રમાદ ને શિથિલતા થાય છે વધારે, એટલે એનો ડર મને પ્રમાદ નો વધારે રહે છે, એ અભિપ્રાય થી લેવાય છે હજી પણ। આપે કીધું હતું કે ભાડું આપવાનું છે, આનાથી આ અભિપ્રાય થી શરીર ના સ્વાસ્થ્ય ના અભિપ્રાય થી કઈ પણ લેવામાં આવે તો દેહાત્મ બુદ્ધિ વધારે તીવ્ર થતી જાય, છતાં પણ તૂટતો નથી અભિપ્રાય,
ક્યાં સુધી આમ નામ કરું? ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં વર્ષોના પ્રવેશ પછી પણ આ પરિસ્થિતિ છે, હજી ક્યાં સુધી કરવું છે આત્માને પૂછવું? કેમ કે શરીરને ગમે એટલું જાળવશો, ગમે એવો અભિપ્રાય રાખશો, સાતોનો ઉદય કે આયુષ એ બધું પૂર્વકર્મ ગોઠવાયેલું છે, એમાં કાંઈ આપણા પરિણામ કામમાં આવવાના નથી. અઘાતીના ઉદય છે એ બધા. આપણા કોઈ પુરુષ કોઈ પુરુષાર્થ અઘાતીમાં કામમાં આવતો નથી. અને ઘાતીને દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ કરવાને બદલે ઉલટો પુરુષાર્થ થઈ જાય છે. જ્યાં ઘાતીને દૂર કરી શકવા માટે પુરુષાર્થ કામમાં આવી શકે એવી પરિસ્થિતિ છે, એ હામોનું ઉલટું થઈ જાય છે. એની અંદર અઘાતીમાં માથું મારતા ઘાતીને આવરણ વધે, ઘાતીનું આવરણ વધારીએ છીએ, ઉલટું નુકસાન વધારતા જઈએ છીએ. નુકસાન કર્યું છે, નુકસાન વધારતા જઈએ છીએ, હજી ક્યાં સુધી કરવું છે? વિચારી આટલું આટલું સાંભળીએ, આટલી નિવૃત્તિ, બધું ફેઇલ કરીને એ કેળાને કે કોઈ નાની એવી ચીજને કે ખાવાની સામાન્ય ચીજને મુખ્ય કરી નાખે, સમજણ બધી અંતરવી જાય. સામાન્ય માણસો અણસમજણા માણસો ઉપવાસ કર ખેંચી શકે છે, આપણે ઉપવાસ તો કરતા નથી. ખાવામાં કે કોઈ એવી ચીજને કાંઈ ગૌણ ન કરી શકીએ, કોઈ અભિપ્રાયને મટાડી ન શકીએ, કેવી વાત છે? અણસમજણા માણસો ઉપવાસ કરે છે, દસ દસ પંદર પંદર ઉપવાસ, મહિના મહિનાના ઉપવાસ ખેંચી નાખે છે અંધશ્રદ્ધાથી. આપણે તો આટલું સમજીએ છીએ, સમજદારી એટલી બધી આની અંદર ઇન્વોલ્વ થયેલી છે, અને ખાવામાં એ કોઈ ચીજને ગૌણ ન કરી શકીએ ખોટા અભિપ્રાયને કારણે. ખોટા અભિપ્રાયને પોષણ મળી જાય. આ તો બહુ જૂનું તમારું ચાલ્યું આવે છે.
એટલે શું બેને કહેતરી થાક ઊંઘ પ્રમાદને લીધે ઊંઘ આવી જાય ત્યારે એની આડમાં ચાર લેવાઈ જાય છે. ચાનું બંધન તો છૂટી ગયું છે, પણ
એ બધા મિસકોન્સેપ્ટ છે. એવું કાંઈ નથી, ચા પીવો તો ઊંઘ ન આવે ને એવું કાંઈ નથી. મને ચા પીવડાવ, પાંચ મિનિટમાં હું જાઉં ચા પી દઉં, ચા પીતા પછી તરત જ સુઈ જાઉં, એવું કાંઈ નથી. બધા મિસકોન્સેપ્ટ છે. એવું કાંઈ નથી.
લાઈટ કરેલી એટલે મેં નક્કી કરેલું કે હવે લાઈટ આવે તો આપણને આમ થાય ને કે હાશ આવી જાય, તો એ માટે નથી કરવું, પ્રયોગ કરું છે કે આવી છે તો શું થયું. તો જ્યારે લાઈટ આવી ત્યારે મેં વિચારી રાખેલું કે માર નથી કરું, પણ પછી છતાંય હું ટ્રાય કરતી હતી, છતાંય તે થઈ જતું હતું કે આવી ગઈ અને આમ થઈ જતું હતું કે લાઈટ આવી ગઈ તો ગરમી ન લાગે. હવે પછી દેહાત્યા થોડું છે,
લાઈટ આવવાથી પંખા ચાલુ છે. શું છે, શું ફાયદો થયો? ક્યાં આવી લાઈટ? આત્મામાં આવી. ક્યાં આવી?
ફિર ઉસકી તરફ ધ્યાન નહીં દિયા, चाय की जगह दूध भी नहीं लिया, दूध भी नहीं लिया, वैसे ही नाश्ता किया। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर दोपहर में अपने आप बंद हो गया, फिर अपने आप बंद हो गया। पहले क्या होता था कि अंदर में ऐसा अभिप्राय रहता था कि चाय नहीं पीते हैं इसलिए सिर में दर्द होता है, तो अगर उस वजह से होता है तो सारे दिन होना चाहिए। अगर चाय की वजह से होता है तो सारे दिन होना चाहिए। लेकिन फिर हमने ध्यान नहीं दिया था, फिर दोपहर में फिर अपने आप सही हो गया। फिर
तो मानसिक खोटा अभिप्राय से गड़बड़ होती है, कुछ दम नहीं है उसमें।
और भी कई बाबत में ऐसे अंदर में अभिप्राय पड़े हुए हैं, पकड़ में आते हैं कि हमने वैसे ही कल्पना कर रखी है कि इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है। तो प्रयोग ऐसे कर करके देखते हैं तो फिर पता लगता है कि किसी से कुछ नहीं होता है।
ठीक बात है,
अंदर में थोड़ा भय लगता है, लिफ्ट में खराब हो जाती है ना बीच बीच में, तो अंदर से भय लगता है कि कहीं बीच में अटक गई तो सत्संग के लिए देरी हो जाएगी। तो सीढ़ी से चढ़ना सही है, लिफ्ट में जा नहीं चढ़ना चाहिए।
ठीक है, सीढ़ी चढ़ जाना, इसमें क्या है, फिर विकल्प खत्म।
शुरू में तो अंदर से भाव आया था कि वॉकिंग में नहीं जाएं, वॉकिंग में नहीं जाएं, चला नहीं जाएगा। लेकिन फिर बंद नहीं किया, बराबर चालू रखा। तो फिर अपने आप ही, फिर चार पांच दिन में धीरे धीरे करके, फिर चार पांच दिन में अपने आप ही धीरे धीरे करके बंद हो गया। लेट लिए थे थोड़ी देर, हमने तो आराम कर लिया था, लेकिन इनका दो तीन दिन से ऐसा बन गया है कि जब भी आराम करती हैं तो श्रुति हैरान करने लगती है।
हेलो हेलो,
तो कोई व्यक्ति संपूर्ण गुणवान हो एवं होत नहीं। अपनु काम बीजा अल्प पण गुण ने मुख्य करवानो, फल अल्प हो एना में, अपना अल्प पण दोष ने गुण मुख्य करवानो, एवी प्रेक्टिस पाड़वी जोईए तो घणो सुधारो थशे।
कल शाम को आप वॉकिंग में जा रहे हैं तो
आप बाथरूम में गए, बाद में हम घर पे जा रहे थे, जाने को तैयार नहीं थे। बन्ना बहन हमारे बोले आ जाओ हमारे घर पे, तो मैं बोली अभी तो नहीं आती हूँ, आज तो मैं मीता बहन के घर पे जाती हूँ। फिर मेरा तो भाव आया कि आपको सामने से बोलूँगी, भाई श्री कलकत्ता चले जाएंगे तो सामने से बोलूँगी, उन गए बाद में बोलूँगी, क्योंकि आप नहीं सुनीता बहन का बहुत प्रणाम बताते, मेरा भी प्रणाम आपको देखे तो बताना, तो मैं आपको सामने से बोलूँगी, पर अभी नहीं, उन गए बाद में। तो उन बोले अभी क्यों, उनको ही साथ में ला लो, उनको ही साथ में ला लो, बोल के तुम दोनों रह जाओ। मैं बोले नहीं नहीं अभी नहीं, मैं आज तो मीता बहन के घर पे जाने वाली हूँ, तो मैं मीता बहन को तो मैं बोल दूँगी, मीता बहन को मैं बोल दूँगी, बोले ऐसे बन्ना बहन हमारे को बोले। और तुम अगर रही है तो उनकी बहू आए हुए हैं ना, तो सुनीता बहन घर पे चले जाते, पाँच चार रोज उनके बहू के पास रह जाती है। अब मैं इतना बोले तो मैं बोले ठीक है। तो फिर मैं नक्की कर लिया, क्यों मेरे से बच्चे नहीं रहते हैं, छोटा बच्चा नहीं रख पाती हूँ मैं, बहू लोग रख लेते, मेरे पोता हो गया पोता हो गया, पर मैं कभी नहीं रखती। तो पहले नक्की करके गई, अगर वहाँ तो बच्ची है, रोने भी लग गए, रोने रोते हुए को कोई देखना नहीं आता, तो पहले नक्की कर ले हे जी तेरे को जाना है, तो अगर वहाँ कोई भी उदय आया तो उथल पुथल नहीं होना, तो जाना, ऐसा हम नक्की करके गए। तो आज वो बच्ची को लिए, नहीं तो मेरे से नहीं रहते, काम कितना कराओ करा लेते, बच्चे नहीं रहते मेरे से। तो आज सूती को लिए तो हमारा कुछ नहीं लगा, अब यहाँ ले उनकी मम्मी वहाँ आपके पास आए शायद ध्यान में मित बनना भी, तो मैं यहाँ ही लाने को तैयार होगी। तो रास्ता में गोसाल जी बोले लो लो हम ले लेंगे, मान लो ठीक है तुम बच्ची को दे दो, तो हमारा ऐसा परिणाम नहीं दिया। परसों आप बोले थे, मैं बोले ना पैरों में कमर में मेरे बहुत तकलीफ रही, तो आप बोले उपेक्षा भाव कर दो, तो परसों से मैं बोले कि भाई श्री बोले तब तो करना ही है, क्या होता है देखेंगे। पहले हमारे कमर में दर्द था, तो आप ऐसे बोले थे तो हमारा डॉक्टर पूरा मना करे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना और नहीं चढ़ना। तो मैं एक रोज आपको बोली थी कि भाई सही आप नीचे बैठते हो और मैं ऊपर बैठते हूँ, मेरे को शर्म आती है, तो आप बोले कि नीचे बैठ जाओ। तो एक दो दिन तो मैं नीचे आपके सामने बैठी, फिर मैं ऊपर बैठने लगी, तो मेरे अंदर में भाव चला कि मैं तो मायाचारी कर रही हूँ, गुरु बोले तो नीचे बैठ। तो जब मैं नीचे बैठी तो मेरा पूरा दर्द कमर का चले गया, तो मेरे को विश्वास था कि भाई श्री बोले तो वचन बराबर हैं। तो हम फिर आज सुबह को, परसों थोड़ी देर गए, फिर आज सुबह को गए, अब भी गए, तो कुछ हमारे को महसूस भी नहीं हुआ कि मेरे दर्द है बोल कर, मामूली जो जैसा है वैसा है, तो हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ा।
हाँ वो तो मानसिक बहुभाग तो मानसिक होता है।
और दिन को कमर के वजह से सोने का और पांव दुखता है, ऐसे नींद नहीं है, नींद की आदत नहीं है, फिर भी वो सीढ़ियाँ ईडियाँ चढ़ते ना तो लगता है कि भाई सो जाऊँ, जब से नक्की कर लिया कि सोना ही नहीं है दिन को, तो जब से आठ रोज हो गया सोते भी नहीं हैं। अब तो पहले दो तीन रोज तो थोड़े उबासार आने लग गई है इसे, तो हम मुँह धो के बैठ गए, अभी दोपहर में ऐसे कुछ नहीं है तो कई सीट सुन लेते, नहीं तो हमारा प्रेम मन को देख लेते, तो कुछ नहीं हुआ इसे।
કાલ વશી આપને ત્યાં આવ્યો હતો ને સાંજે, ટાઈમ લીધો હતો ને, વશીને મને નહોતું કીધું, મને નહોતું કીધું, એટલે પછી એમ થઈ ગયું કે મને પૂછ્યું તું તો ખરું ને, તો મને કેવું જોઈએ ને એ રીતના પરિણામ થઈ ગયા હતા પછી। પછી ઘણી અપેક્ષા ને ઘણું રહે છે, પછી અપેક્ષા ઘણી રહે છે,
હોમવર્ક એટલા ટાઈમે પૂરું થઈ ગયું હતું પછી, તો એ વખતે એમ દુઃખ થતું હતું કે હું વોકિંગમાં શું કરવાનું હો ગઈ, વોકિંગ થી આવીને પણ હું કરી શકવાની હતી પણ શું કરવાનું હો ગઈ। એના પછીના દિવસે સન્ડે હતો, ત્યારે પણ હું કરી શકત પછી પણ તોય તે બે દિવસ પહેલા એવું થઈ ગયું તું વોકિંગ માં ન આવે
કેમ એમ કે એવું કેમ કે
પછી હોમવર્ક ની ઘણી મુખ્યતા આવી ગઈ હતી કે હોમવર્ક પતશે નહીં અને પછી મેમ વધશે મને
સ્પીકર માં આવે એનો કઈ વાંધો નહીં આ તો ચાલશે ને બરાબર સાંભળવામાં વાંધો નહીં એડજસ્ટમેન્ટ કરી લેવાનું
બેસી પછી તમે કીધું તું કે ધ્યાસ ધ્યાસ ન કરવું જોઈએ જે કઈ પણ દુખે તો બસી આજે સવારથી મારો સર અને પેટ દુખતું હતું તો ભાઈશી હું મારું આમ ધ્યાન તો ધરતું હતું કે આ મને પરિભ્રમણ કરાવશે એ જે પરિણામ જતા હતા ને એની એ ત્યાં ભાઈશી પણ એ ઓલા ટાઈમે પણ એવું જ થયેલું પહેલી વાર આજે પણ એવું જ થયું કે વારે વારે એના પ્રત્યે પરિણામ જતા
પૂજ્ય શ્રી સુભાગભાઈ ને જ્ઞાન વિશે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે અને પૂજ્ય શ્રી સુભાગભાઈ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી પૂજ્ય સુભાગભાઈ ઉપર લગભગ 250 પત્ર લખાયેલા છે તેમ પૂજ્ય શ્રી સુભાગભાઈ ના પત્રો ઉપરથી જણાય છે. તેવી જ રીતે પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદ રાજચંદ્ર દેવ પ્રત્યે પૂજ્ય શ્રી સુભાગભાઈએ પણ લગભગ આશરે 500 ઉપરાંત પત્રો લખ્યા હશે. 500 ને પણ 1500 જેટલા લખ્યા હશે. જુદી જુદી જગ્યાએથી પત્રો મેળવવાનો પુરુષાર્થ કરવામાં આવતા પૂજ્ય શ્રી સુભાગભાઈએ કૃપાળુદેવ પર લખેલા 56 પત્રો મળી આવ્યા છે. અભી થોડા પ્રાસંગિક ચલતા હિન્દીમાં બતાવીને એક પત્ર પૂજ્ય શ્રી અંબાલાલભાઈ પર લખેલો મળી આવેલ છે. તે ઉપરાંત પૂજ્ય શ્રી સૌભાગીભાઈના દેહ વિલય પછી તેમના પુત્રો મણિભાઈ તથા ત્રંબકભાઈ તરફથી લખવામાં આવેલા થોડાક પુત્રો મળી આવ્યા છે. તેમાંથી અમુક પુત્રો અહીં લેવામાં આવ્યા છે. પૂજ્ય શ્રી સૌભાગભાઈ દ્વારા લખવામાં આવેલા પુત્રોના જવાબ રૂપે પરમ કૃપાળુ દેવના જે પુત્રો વચનામૃતજીમાં જણાયા છે તે પત્ર આ પ્રકરણમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. જેથી બંને વચ્ચે આધ્યાત્મિક સંબંધની ખાતરી આપણે વાંચી શકીએ. એટલે આપણે જે હેતુથી અત્યારે પત્રો વાંચવા શરૂ કર્યા છે કે બંને વચ્ચેના સંબંધો કેવી રીતે ડેવલપ થયા અને કઈ કઈ ટાઈપથી ડેવલપ થયા એમાં આપણને આ થોડો મદદ કરતા થશે આ પુસ્તક. અપ્રગટ પત્રો પહેલો વાંચે. પરમ પૂજ્ય સૌભાગ્યને આપનો કાગળ એક આજે મળ્યો તે પહોંચ્યો. સાથેનો કાગળ પ્રમાણે મળતી તેવી વિગતથી આજે બજાણે પત્ર લખ્યું છે. અંતર્ગમ્ય વાત સંબંધી કોઈથી પરિચય નહીં એટલે મન પ્રફુલ્લિત રહેતું નહોતું. શું લખે છે? અંતર્ગમ્ય વાત, ભીતર કી બાત, किसी से परिचय नहीं था, इसलिए मन प्रफुल्लित नहीं रहता था। अतः दो चार दिन जो आपका समागम हो तो विशेष रूप से प्रफुल्लितता रहे, इसके सिवा दूसरा कोई व्यवहार प्रसंग नहीं है। आपको योग्य लगे हाँ, कृपा देव ना अप्रगट पत्र से एटले मोटा ग्रंथ में नहीं ई वाचो छु बे पत्र एवा छे, पछी पछा बीजा तो आमा पत्र नी अंदर छे। इसके सिवा दूसरा कोई व्यवहार प्रसंग नहीं है। आपको योग्य लगता हो तो दो चार दिन के लिए दर्शन देना, सुभाग भाई ने लिखा है, योग्य लगे तो दो चार दिन के लिए दर्शन देना। योग्य लगता हो इसका अर्थ ऐसा है कि मेरा आपका पारमार्थिक प्रसंग नहीं जान करके लोग विपरीत अनुमान करे, ऐसा होने का संभव और आपकी प्रसन्नता रहती हो तो दर्शन देना, वरना तो ईश्वर इच्छा, नहीं तो ईश्वर इच्छा। वियोग निभा लेंगे, वियोग आपका वियोग में निभा लूंगा, पधारेंगे तो प्रफुल्लित हो। रूपाळु देव ने એમને મળવાનો કેવો ભાવ થતો હતો, તો એમ કે યોગ્ય લગે તો આપકો આપકો દર્શન દેના હૈ, તો યોગ્ય લગે કા અર્થ એસા હૈ કે આપકા ઓર મેરા પારમાર્થિક સંબંધ હૈ વો તો લોગ જાનતે નહીં, કોઈ વિપરીત ભી કલ્પના કર સકતે હૈ, ક્યોંકિ યે 23 સાલ કા લડકા ઓર યે 67 સાલ કા બુઢા એક બુઝુર્ગ આદમી તો ઇસકો યહાં આવે તો થોડા લોકો કો લગે યે ક્યા બાત હૈ, યે બુઢા કો ક્યા હો ગયા, બાર બાર વહાં જાતા હૈ, એક તો વો બાત ઓર દૂસરા આપકો પ્રસન્નતા રહેતી હો તો દર્શન દેના, અગર આપકો પ્રસન્નતા નહીં રહેતી હો તો ઈશ્વર ઈચ્છા, मेरे को तो वियोग लगता है मैं निभा लूंगा। मतलब खुद को वियोग की वेदना थी वो उसमें से निकलते हैं, निकलती बात है। એક અને બે પત્રની કોપી શ્રી જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટ વેવાણીયા વવાણીયા પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ છે। મણીની ઈચ્છા એટલે મણીભાઈ કી ઈચ્છા, વિવાહ કે ઉપર બહુત આને કી લગતી હૈ, ઉસકી વૃત્તિયાં फिलहाल बहुत संसार की इच्छा वाली है, इसलिए एकदम वृत्ति को रोकना नहीं बन सके, ये योग्य है। तीव्र वृत्ति वाला हो एकदम वृत्ति ने दबा भी ना सके, योग्य है ऐसा समझ में आता है। अब ऐसी वृत्ति थोड़े वक्त में जैसी होगी वैसी जान जान करके उसकी इच्छा पूर्वक करेंगे। कोई भी प्रकार से उसे यहाँ व्यवहार में फिलहाल कुछ प्रवृत्ति नहीं की है, क्योंकि बाल वृत्ति और इस भूमिका मुंबई उपाधि की शोभा का संग्रह स्थान है। मुंबई है वो उपाधि की शोभा का संग्रह स्थान है, उसे देखने की कुछ एक वृत्ति जिससे बने वहां तक उसकी इच्छा के अनुकूल चलने में आया है। जहां अधिक उसका अहित देखा है वहां मात्र कुछ रोक लगाया है, बाकी कहीं भी प्रकार से दूसरे प्रकार से उसको रोकने का जैसा नहीं लगा है। चाहे जैसी उसकी बाह्य वृत्ति, फिर भी मेरे प्रति उसका भाव आपकी प्रेरणा से होने से श्रेष्ठ ही रहा है, और ये भाव उसे भविष्य में किसी काल में अवश्य योग्य करेगा, ऐसा मेरा संकल्प है। ऐसा दो पत्र और प्रकट लिया है। ई पत्र ने वर्तो एमने 378 मो पत्र लिखो से 1948 साल ना। अपने जी 1946 साल ना पत्र चाले से, पछी 48 साल में अनुसंधान लई लेशो।
अपराध हो गया है, कल हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, वो क्षमा करने योग्य नहीं है।
क्या बात है, नींद आ गई? वो
नींद नहीं आई थी, वैसे चक्कर आ गया था।
वो तो तबीयत ऐसी थी ना, इसमें तो क्या शरीर पे अपना काबू थोड़ी ना है।
हमने वैसे बहुत प्रयास किया था लेकिन नहीं चला आगे।
स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गए तो इसके लिए तो कोई अपना कंट्रोल थोड़ा हो सकता है।
अंदर से हमें बहुत दुख होता था कि ऐसे में अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो हम कहाँ आएंगे। फिर रात को जागृति थोड़ी बढ़ी थी तो रात में थोड़ी जागृति बढ़ी थी तो फिर दोबारा चक्कर आया ना, जब पता चला कि शाम को भी ऐसी चक्कर आ गया था। हमारा जो दया शक्ति का बहुत तीव्र परिणाम है,
इसलिए तो आपका ध्यान खींचते हैं बराबर, खाने में रस नहीं लेना। कल चर्चा हुई थी कि आपका कृपा पत्र मिला ऐसा क्यों लिखा है, अभी अनुसंधान बैठता है कि कृपा पत्र क्यों लिखा था। वो बहुत सत्संग चाहते थे, पत्र व्यवहार भी चाहते थे, तो पत्र लिखा वो भी एक कृपा है ऐसा करके ले लिया। साथ में पद मिला,
भाभी का टेलीफोन आया था कलकत्ता से कि भाई साहब तबीयत ठीक नहीं है, कमजोर तो काफी थे वहाँ पर, कमजोर तो काफी थे, रात को नींद नहीं आता उनको, तो तबीयत काफी खराब हो गया था कि आप एक बार आ जाओ। मेरे परिणाम में ऐसा कोई नहीं हुआ, बात कुछ भी असर नहीं आया था। उसका। फिर परसों दिन राणा बोला कि माँ का तबीयत खराब था, चेस्ट में पेन हुआ था, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाए थे। वो सुन के भी मेरे को कोई मेरा परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ा, हम भूल ही गए थे, इस तरह से कोई विकल्प भी नहीं हुआ। आज सत्संग में बन्ना बोली कि आपको माँ के लिए बहुत लगाव है, तो मेरे को थोड़ा अनगवा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि हम तो प्रयास करते हैं इसमें, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कोई। हम कुछ बहस भी किया उससे, कुछ बहस भी किया, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, हम तो कोशिश करते हैं, मेरे को तो कोई परिणाम में दिखता नहीं है। कारण वास्तविक रूप से परसों दिन राणा बोला था तो मेरे को कोई भी विकल्प नहीं हुआ, हम भूल गए। आज हमको याद आया, वंदना जब ये बात बोली तब मेरे को याद आया कि हमने तो ऐसा कोई परिणाम हमारा नहीं हुआ, हम तो प्रयास करते हैं कि कोई अपनत्व नहीं करे। और इनफैक्ट वहाँ से कलकत्ता का मेरे को कोई याद भी नहीं आता, राजा राजीव से हम एक महीना में कोई बात भी नहीं किया, ऐसा कोई याद भी नहीं आता। मेरे परिणाम में लग्न का परिणाम हमको दिखने में नहीं आता। फिर वंदना जब बोली तो मेरे को थोड़ा अनगवा लगा। फिर मीता बहन बोली कि कोई भी आदमी कोई भी बात करता है तो उसको सुन लेना चाहिए, और ये बात भी मेरे को ठीक लगा कि हमारे परिणाम में कोई भी कुछ बोलता तो मेरे को क्यों असर होता है।
आपको पूछ लेना चाहिए कि मेरे को जो लगाव है वो किस आधार पे।
हाँ, वो पूछा था, उसने बोला कि आप राणा आए, राणा जब आया तो आपने पूछा कि माँ कैसी है।
अच्छा।
माँ के बारे में पूछा था आपने।
पूछा था ना।
हाँ, खाली पूछा था।
अच्छा।
तो हम बोला कि ये तो साधारण सा हो सकता है, वो इसलिए कि साधारण सा हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, आया राणा कलकत्ता से आया है इसलिए, कारण हम टेलीफोन वगैरह में बात नहीं करते हैं। राणा को ये पूछा था कि माँ, उसके बाद ये माँ का तबीयत खराब है ये बात उसने बाद में बताया था मेरे को, पहले हम पूछा था। तो फिर मीता बहन बोली कि कोई भी अगर बात करता है तो आपको इस विषय में बहस नहीं कर। मेरे को ये बात सही लगा कि ठीक बात है, कि मेरे को कोई भी दोस्त बताता तो मेरे को समझना चाहिए। फिर मेरे को बाद में इसका और भी थोड़ा विचार चला तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद हम कोई जो प्रयास करते हैं वो यथार्थ रूप से प्रयास नहीं होता है, इसके कारण से कुछ अभिमान होता है कि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि हम शायद हम अपनत्व नहीं करते हैं। ऐसा मेरे को जो 493 का भी जो हम देख रहे हैं उसमें भी ये बात आपका भी बात बहुत आता है कि यथार्थ रूप से अयथार्थ रूप से प्रयास का, हमको ऐसा लगा कि शायद हम अयथार्थ रूप से प्रयास करते हैं। कारण परिभ्रमण के वेदना ये सब परिणाम हमारा परिभ्रमण कराने वाला परिणाम है, वो बात हमको ज़्यादा देखना चाहिए या उठाना चाहिए उस तरह से। इस तरह से
आपने ऐसा बोला कि खाली पूछा था, ऐसा हल्का सा क्यों ले लिया जबकि घर के और भी मेंबर हैं, तो उसके विषय में आपने नहीं पूछा।
ऐसे वो वंदना बोली पर मेरे को याद नहीं है कि हमने पूछा था, ये बात उसने बोली कि आपने पूछा था, मेरे को याद नहीं है कि हमने पूछा था, ये बात मेरे को याद नहीं है कि हमने पूछा था। वंदना बोली कि आपने पूछा था, पर मेरे को इनफैक्ट याद नहीं है कि हमने पूछा था ऐसा, इसलिए ऐसा कोई परिणाम हमने चेक कर नहीं पाए कि हमारा कोई पूछा ही था। वो बोले थे कि आपने पूछा था, तो मेरे को याद भी नहीं है कि हम ऐसा पूछा भी था।
मतलब क्या है कि कभी कभी अपने परिणाम अपने ध्यान में नहीं आते हैं और दूसरे के ध्यान में आते हों, ऐसा बन सकता है। इस स्टेज में अपने सभी परिणाम पर हमारा कोई वॉच हो, कोई ज्ञान रहता हो, ऑब्जर्वेशन रहता हो, ऐसा तो बने नहीं, और दूसरे के ख्याल में आता हो। जब दूसरा कोई बताता है तब अपने को बात को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ऐसा क्यों लिया, ऐसा नहीं लेना चाहिए।
हाँ, वो तो मेरे को भी ठीक बात सही लगा कि मेरा ठीक नहीं है। फिर हमने ऐसा एक निश्चय किया कि अब ऐसा कभी नहीं लेना है मेरे को, ऐसा हमने निश्चय भी किया कि ये इस तरह से हमको कभी नहीं लेना है। फिर हमने जब चेक किया तो मेरे को ये लगा कि शायद कुछ अभिमान होता है कि इस तरह से हमने प्रयास करते हैं, तो ये यथार्थ प्रकार का अभिमान भी हो सकता है, ऐसा लगा मेरे को।
क्योंकि कभी भी कोई अपना दोस्त बताता है, हो सकता है के दोष नहीं भी हो गए हमारे में, और हो गए भी, दोनों बात हो सकती है। तो अपने को तो दोनों में एक ही बात लेना है सरलता से, कि ठीक है वो बताते हैं शायद अपना ख्याल नहीं भी हो गए, अपन चेक करें और कोशिश करें कि